पृष्ठ संख्या 115। समाधान। सांगीतिक शिक्षण संस्थाओं में अभी तक हमने उसकी उपलब्धियों पर ध्यान दिया, साथ ही साथ उसकी न्यूनताएं भी देखी। ऐसा नहीं है कि संस्थागत शिक्षण से लाभ कम और हानि अधिक है, परंतु यह हानि या न्यूनताएं ऐसी नहीं है कि जिन्हें दूर न किया जा सके। शिक्षक अगर चाहे तो अपनी सृजनशीलता का उपयोग संस्थागत शिक्षण पद्धति में भी कर सकता है। पूर्व निश्चित पाठ्यक्रम में भी प्रतिभा संपन्न शिक्षक अपनी कलात्मक शैली, कल्पनाशीलता का उपयोग तथा जगह जिस किसी न किसी रूप से कर सकता है और पाठ्यक्रम को भी यथासंभव रुचिकर बना सकता है। पृष्ठ संख्या 116। संस्थाओं में कार्यरत ऐसे अनेक शिक्षक रहे हैं जो कलाकार के रूप में भी जाने जाते रहे हैं तथा जिन्होंने अपनी कलात्मक पैठ से अपने शिक्षण को अधिकाधिक रुचिकर बनाया है, विद्यार्थियों में संगीत के प्रति रुचि उत्पन्न की है तथा कुछ अच्छे विद्यार्थी भी तैयार किए हैं। यदि शिक्षक कलाकार अपने शिक्षण कार्य में समर्पण एवं निष्ठा बनाए रखें तो संस्थागत शिक्षण प्रणाली में भी उसकी सृजनशीलता का पूरा उपयोग संभव है। संगीत की संस्थागत शिक्षण प्रणाली को उन्नत करने के लिए यह अति आवश्यक है कि इसमें गुरु शिष्य परंपरा द्वारा शिक्षण प्रणाली की सभी अच्छाइयों को सम्मिलित कर सीमित सामूहिक शिक्षण प्रदान किया जाए। संगीत संस्थाएं सामान्य शिक्षण संस्थाओं की भांति अधिकतर व्यक्तियों को सुस्वर बनाने का उद्देश्य रखती हैं और ऐसा उद्देश्य से न चलाई जाएं। संगीत के प्रचार प्रसार का यह अर्थ नहीं है कि संस्थाओं में गुणबद्धता को बढ़ाया जाए तथा संयोग योग्य अयोग्य सभी प्रकार के विद्यार्थियों को अधिकाधिक प्रवेश दे दिया जाए। संगीत का प्रचार प्रसार योग्य एवं सुपात्र विद्यार्थियों के माध्यम से होना चाहिए। आवश्यक विद्यार्थियों को प्रवेश देने की प्रवृत्ति को शिक्षकों एवं संगीत संस्थाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार कर दूर किया जा सकता है। यदि संगीत संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या देखकर अनुदान प्रदान करने के नियम को समाप्त किया जाए तथा संस्थाओं में सुयोग्य विद्यार्थियों के आधार पर अनुदान निश्चित किया जाए तो निश्चित ही संस्थाओं के शिक्षण स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। शासन द्वारा सभी संस्थाओं को थोड़ा थोड़ा अनुदान न देकर एक निर्धारित नीति के अनुसार कुछ पुरानी एवं चुनी हुई संस्थाओं को ही पूर्ण अनुदान देना चाहिए। यह अनुदान देते समय कक्षाओं में उनके स्तर के अनुसार विद्यार्थियों को अधिकतम संख्या 15, 10 एवं 5 का नियम स्वीकार्य होना चाहिए। इस प्रकार संस्थाओं में विद्यार्थियों के गुणात्मकता का महत्व प्राप्त होगा और संख्यात्मकता की प्रवृत्ति पर भी रोक लगेगी। संस्थाओं में सुयोग्य विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए यह आवश्यक है कि विदेशों की भांति अपने यहाँ भी योग्यता परीक्षण विधि का विकास किया जाए तथा इसकी स्तरीय परीक्षाएं भी ली जाएं। सुपात्र विद्यार्थियों को एक सीमित संख्या में प्रवेश मिलने पर गुरु शिष्य परंपरा की भांति संस्थाओं में भी गुरु शिष्य के संबंधों में निकटता आ रही है। कक्षा में विद्यार्थी एक सीमित संख्या होने पर शिक्षक द्वारा उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकता है। संगीत शिक्षण की प्रस्तुति प्रमुख संस्थाओं के प्रांगण में शिक्षकों हेतु निवास तथा विद्यार्थियों हेतु छात्रावास होना नितांत आवश्यक है। पृष्ठ संख्या 117। ऐसा होने पर शिक्षक विद्यार्थियों के नित्य के अभ्यास पर दृष्टि रख सकते हैं, उनकी कठिनाइयों एवं त्रुटियों का निराकरण कर सकते हैं। संगीत विषय में जितना शिक्षा का महत्व है, उतना ही महत्व अभ्यास का भी है। अतः शिक्षक का कर्तव्य मात्र शिक्षा प्रदान करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के अभ्यास को भी सही दिशा प्रदान करना है। यह तभी संभव है जब शिक्षक एवं विद्यार्थी प्राचीन गुरुकुलों की भांति एक दूसरे के समीप रहकर निरंतर संपर्क बनाए रखें। गुरु शिष्य प्रणाली की भांति संस्थाओं में भी संगीत का ज्ञान मात्र न दिया जाकर कला बोध कराया जाना संभव है, परंतु यह तभी हो सकता है जब पाठ्यक्रमों को गहन शिक्षक प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ से ही बनाया जाए। प्रत्येक पाठ्यक्रम एवं उसके शिक्षण काल को इस प्रकार निश्चित किया जाए कि वह एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम बने। पाठ्यक्रम इतना ही रखा जाए कि उपलब्ध शिक्षण काल में इसका गहन अध्ययन व अभ्यास हो सके। प्रवेश हेतु योग्यता परीक्षण के समय मुख्य रूप से दो प्रकार के ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। पहला, जिसमें कलाकार बनने की योग्यता हो, तथा दूसरा, जो एक शिक्षक या संगीत से संबंधित अन्य व्यवसायों को ग्रहण करने के लिए तत्पर है। सभी पाठ्यक्रमों को प्रारंभ से इन दो धाराओं में चलाया जा सकता है। कलाकार निर्माण करने के उद्देश्य से बनाए गए पाठ्यक्रमों के में क्रिया शिक्षण को प्राथमिकता व शास्त्र पक्ष का अनुपात कम हो सकता है, तथा दूसरे प्रकार के पाठ्यक्रमों में क्रिया एवं शास्त्र का अनुपात एक बराबर भी मान्य हो सकता है। यदि इन दो प्रकारों के पाठ्यक्रमों को सोच विचार कर बनाया जाए तथा उसके अनुसार शिक्षण व्यवस्था की जाए, तो यह कहा जा सकता है कि संगीत की शिक्षण संस्थाओं से भी होनहार विद्यार्थी एवं भावी कलाकार तथा शिक्षण दोनों ही उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आज का विद्यार्थी सभी घरानों और उनकी शैलियों को सुनने के कारण इन सभी से कुछ प्रभावित हो रहा है, और वह जिस शैली को सीख रहा है उसकी शुद्धता को सुरक्षित रखने में अपने आप को असमर्थ पाता है। विद्यार्थी ही नहीं, स्वयं घरानों के अग्रणी कलाकार अपने को अन्य घरानों के प्रभाव से बचा कर रखने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। आज के घरानेदार गायकों में शैलीगत शुद्धता के संबंध में पहले जैसी कटुता नहीं है। आज का सामाजिक श्रोता भी घरानों की विशुद्ध शैली के स्थान पर एक रोचक एवं आकर्षक शैली को अधिक पसंद करता है। किसी भी सम्मेलन में आज ऐसे श्रोता बहुत थोड़े ही देखे जाते हैं जो शैलियों और उनकी शुद्धता में अंतर को समझ सकें, भली भांति भांप सकें। पृष्ठ 118। श्रोताओं में अधिकतर ऐसे ही रहते हैं जो शास्त्रीय संगीत के मनोरंजक पक्ष को ही महत्व देते हैं। सरकार आज के विद्यार्थियों तथा श्रोताओं की परिवर्तित रुचि के संदर्भ में ऐसे गायन शैली का भी विकास किया जा सकता है जिसमें सभी शैलियों का मिश्रण न हो परंतु समग्रता हो। संगीत के संस्थागत शिक्षण के प्रारंभिक दशकों में संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों के अदभ्य उत्साह, समर्पण एवं निम्न के फलस्वरूप तथा इन संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सीमित संख्या एवं उसमें प्रतिभा एवं लगन के कारण बहुत अच्छा कार्य हुआ है। उस समय संगीत शिक्षा पाए हुए अधिकांश विद्यार्थियों ने कलाकार या शिक्षण के रूप में ख्याति अर्जित की तथा संगीत के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान किया। परंतु जैसे जैसे नई शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ होती चली गईं तथा संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होती चली गई, वैसे वैसे संगीत शिक्षण का स्तर गिरता चला गया। संस्थाएं चलाने वाले कुछ व्यक्ति तो यह मानकर चलने लगे कि संगीत संस्थाओं का कार्य एक फैक्ट्री की कंघी, तेल, साबुन के समान विद्यार्थियों का उत्पादन करना है एवं संगीत के श्रोता तैयार करना है। यहाँ कलाकार उत्पन्न करने की बात सोचना भी एकदम अव्यवहारिक है। उनके अनुसार जिन विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से संपूर्ण शिक्षा जगत का स्तर प्रभावित हुआ है, उन्हीं कारणों से संगीत संस्थाओं का स्तर भी प्रभावित हो रहा है। परंतु यदि हम इस विषय पर तनिक गंभीरता से सोचें तो हम देखेंगे कि सामान्य शिक्षा एवं संगीत शिक्षा में बड़ा ही अंतर है। देश के अधिकाधिक अयोग्य व्यक्तियों को संगीतज्ञ बनाने का अभियान चलाना तर्कसंगत नहीं है। सामान्य शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है, परंतु संगीत शिक्षा नैसर्गिक गुणों से युक्त व्यक्तियों को ही प्रदान करना उचित है। अयोग्य व्यक्तियों को इस हेतु प्रोत्साहित करना, उनके जीवन के साथ अन्याय करना, संगीत विद्या का अहित करना तथा मात्र व्यवसायिकता को प्रोत्साहन देना ही कहा जा सकता है। आज इस व्यवसायिकता की प्रवृत्ति बढ़ जाने के कारण ही संगीत शिक्षा का स्तर गिरा है। संगीत संस्थाओं से सैकड़ों की संख्या में ऐसे विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं जो कलाकार तो क्या संगीत विद्यार्थी कहलाने लायक भी नहीं हैं। हम यह मान सकते हैं कि संस्थाओं का उद्देश्य कलाकार बनाना नहीं है, परंतु वह भी नहीं कहा जा सकता कि संस्थाओं से होनहार विद्यार्थी भी नहीं निकल सकते। सभी संगीत संस्थाओं का कर्तव्य है कि वे संगीत शिक्षा के दिन प्रतिदिन गिरते हुए स्तर पर रोक लगावें तथा यह भी प्रमाणित करें कि संगीत संस्थाएं संगीत की उन्नति के लिए स्थापित हुई हैं, अवनति के लिए नहीं। आज अपने देश में विभिन्न प्रकार की संगीत शिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं, जो मुख्य रूप से तीन प्रकार की हैं। पहला, एकमात्र संगीत शिक्षण के लिए स्थापित। दूसरा, सामान्य या उच्च शिक्षा के साथ संगीत शिक्षण संस्थाएं तथा विश्वविद्यालय। तीसरा, गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित करने तथा घरानों की शिक्षा को महत्व देने वाली संगीत संस्थाएं। पृष्ठ संख्या 119। इनमें से प्रथम दो प्रकार की संगीत संस्थाओं के अपने उद्देश्य सही नहीं हैं। ये संस्थाएं सब कुछ करना चाहती हैं जो असंभव है। एकमात्र संगीत शिक्षण की संस्थाओं में संगीत क्रिया के पूर्वकालीन एक निष्ठ गहन पाठ्यक्रम चलाए जाकर उनमें सुयोग्य भावी कलाकार उत्पन्न किए जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालयीन संगीत विभागों संकायों में संगीत के बौद्धिक शास्त्रीय पक्ष को महत्व प्राप्त हो सकता है तथा सुयोग्य शिक्षकों के साथ संगीत के अनुसंधानकर्ता, विवेक युक्त श्रोता, लेखक, आलोचक, प्रशंसक तैयार हो सकते हैं जो काम कंजर्वेटर कर सकता है वह विश्वविद्यालय का संगीत विभाग नहीं कर सकता। जो काम संगीत विभाग कर सकता है, उसकी अपेक्षा संगीत विद्यालय से नहीं की जा सकती। यह सत्य है, परंतु आज जो संगीत शिक्षण के उद्देश्य के बारे में कुछ ऐसी उलझन या अस्पष्टता बनी हुई है कि सभी प्रकार की संस्थाएं सभी उद्देश्यों को पूरा करने में अपने आप को समर्थ समझती हैं और इसलिए उसके प्रति अपने को जिम्मेदार समझती हैं। इस प्रकार यथार्थ दर्शन के अभाव में भ्रांति जाल पनपता है। सत्य तो यह है कि इन संस्थाओं के प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी समस्याएं और मर्यादाएं हैं और प्रत्येक की अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ग का वैशिष्ट्य यदि निश्चित हो सके तो संस्थागत शिक्षक संगीत शिक्षण का स्तर ऊंचा करने के लिए सभी का सम्मिलित प्रयास हो सकता है। इस हेतु तीनों प्रकार के संस्थाओं में परस्पर विचार विमर्श की आवश्यकता है। आज चिकित्सा उद्योग कानून के शिक्षण के लिए अखिल भारतीय परिषद बनी हुई है। यदि संगीत शिक्षण के लिए भी उसी प्रकार की परिषद बन सके, तो अब तक जिन प्रश्नों और समस्याओं का विवरण दिया गया है, उन सबके समाधान के लिए व्यवस्थित प्रयास हो सकता है। ललित कला, चित्रकला, मूर्तिकला के शिक्षण को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के अंतर्गत मान लिया गया है, किंतु संगीत शिक्षण के नीति निर्धारण के लिए कोई अखिल भारतीय संस्था नहीं है। प्राथमिक स्तर पर बालकों में उल्लास, उमंग, बंधुत्व, देश प्रेम आदि की भावनाओं को उद्दीत करने वाले सामूहिक गीतों एवं नृत्यों का अनिवार्य शिक्षण होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की कुछ संस्थाओं में इस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, तो बहुतों में बिल्कुल नहीं किए जाते। बालक की प्रतिभा प्राथमिक शिक्षा में समूह गान एवं नृत्य का महत्व सभी शिक्षा शास्त्रियों द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण प्राथमिक शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के तहत देश के सभी प्राथमिक शालाओं में उपयोगी संगीत शिक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 120। इस संबंध में डॉक्टर A.M.R. गौतम, उप कुलपति इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ में भी अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन कर्नाटक मई 1981 में अपने विचार निम्न अनुसार व्यक्त किए थे, जिसका हिंदी अनुवाद निम्न प्रकार है। परंतु संस्थागत संगीत शिक्षण स्थापित हो चुका है, अतएव अब हमें यह देखना चाहिए कि संस्थाओं का पर्याप्त विकास हो ताकि वहां प्रदान किया जाने वाला शिक्षण संतोषप्रद हो। इसलिए स्कूल स्तर पर संगीत शिक्षण का पूरी तरह पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। स्कूल स्तर से मेरा आशय प्राथमिक स्तर से है। नए विद्यार्थियों, छोटे बच्चों को हमें भावी जीवन के संगीत जगत में ले जाने के लिए तैयार करना होगा। यह प्रत्येक बालक को संगीत की समझ पैदा करने वाले कुछ पाठों के पूर्व होना चाहिए। फिर संगीत का एक कला की भांति परिचय कराया जा सकता है तथा अंतिम रूप से संगीत शिक्षा के सामान्य सांगीतिक संस्कृति के आधार रूप में दिखाया जा सकता है। मुझे लगता है कि संगीत के स्कूली शिक्षा में यह चार स्थितियां आवश्यक हैं। अन्य शब्दों में सामान्य संगीत शिक्षा और विशेष शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा के पूर्व माध्यमिक स्तर तक संगीत शिक्षण का प्रावधान वैकल्पिक विषय के रूप में होना चाहिए तथा उनमें संगीत की सैद्धांतिक बातों के प्रारंभिक शिक्षा के साथ एकता एवं सामूहिक समूह गीत, लोकगीत तथा बालिकाओं हेतु सुगम एवं लोक नृत्यों का शिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शास्त्रीय संगीत को लड़कों एवं लड़कियों दोनों के लिए वैकल्पिक विषय की भांति रखते हुए शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत एवं नृत्य का मिला जुला शिक्षण प्रदान किया जा सकता है। अभी तक अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में केवल लड़कियों के लिए गायन विषय बहुत कम स्थानों पर है। इसके अतिरिक्त वाद्य संगीत एवं नृत्य शिक्षण का प्रावधान तो सभी प्रांतों में लगभग नहीं है। सभी प्रांतों में यदि माध्यमिक स्तर से संगीत के प्रमुख विधाओं को भी उनके बीए पाठ्यक्रम में संगीत शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी उपलब्ध हो सके, जब तक ऐसा नहीं होता, विश्वविद्यालयीन संगीत विभागों की पूर्ण चर्चित दयनीय स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। इसी प्रकार विश्वविद्यालयीन संगीत विभागों में माध्यमिक स्तर संगीत सीखे हुए विद्यार्थियों को ही प्रवेश देना चाहिए तथा गायन के साथ प्रमुख संगीत वाद्य एवं नृत्य की विभिन्न विधाओं के शिक्षण का प्रावधान होना चाहिए। एकमात्र संगीत शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की अपेक्षा विश्वविद्यालयीन संगीत विभागों में विभिन्न संगीत पद्धतियों के अध्ययन, सौंदर्य शास्त्री, ध्वनि शास्त्रीय अध्ययन, शोध एवं अनुसंधान के लिए भी विस्तृत क्षेत्र है जो अभी तक कलामय अछूता है। पृष्ठ संख्या 121। संगीत के शास्त्र पक्ष के शिक्षण हेतु जहाँ इन विश्वविद्यालयों की उपाधियों को महत्व प्राप्त हो सकता है, वहाँ संगीत के प्रायोगिक शिक्षण हेतु संगीत की एकमात्र शिक्षा देने वाली संस्थाओं की उपाधियों को महत्व प्रदान किया जा सकता है। यथासंभव सभी संस्थाओं में संगीत के प्रयोग एवं शास्त्र शिक्षण हेतु पृथक पृथक शिक्षकों की नियुक्ति करना भी लाभप्रद होगा। इसी प्रकार ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी, टप्पा इत्यादि के विशिष्ट शिक्षण हेतु उनमें विशिष्टता प्राप्त शिक्षण को भी पृथक पृथक नियुक्त करना, इन शैलियों को प्रोत्साहित करना होगा। विश्वविद्यालयों हेतु स्वीकृति, अतिथि प्राध्यापकों, प्रदर्शन व्याख्यानों, कर्मशालाओं, व्याख्यालयों, प्रेक्षागृहों, परिसंवादों इत्यादि की योजना का विस्तार कर इसे महाविद्यालयीन स्तर पर लागू करने से संगीत के माध्यमिक महाविद्यालयों को भी इसका लाभ मिल सकेगा। प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों का चयन कर उन्हें योग्य गुरुओं के पास कुछ वर्षों तक प्रशिक्षित करने से अच्छे कलाकार के निर्माण की संभावनाएं बढ़ेंगी। भारत शासन का सांस्कृतिक मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभागों ने चुनी हुई प्रतिभाओं को सांस्कृतिक छात्रवृत्ति के माध्यम से अच्छे गुरुओं के पास संगीत शिक्षा दिलाने का स्तुत्य प्रयास किया है। संगीत संस्थाएं भी इस प्रकार की छात्रवृत्तियां देकर छात्रों को उच्च शिक्षा का प्रबंध कर सकती हैं। इस प्रकार आज की संस्थागत शिक्षण प्रणाली में शोधित गुरु शिष्य अनुबंध सम्मिलित किए जाने से संगीत शिक्षण के स्तर में सुधार एवं प्रगति हो सकती है। संगीत शिक्षण संस्थाओं को जहाँ शास्त्रीय संगीत के समुचित शिक्षण की व्यवस्था करती है, वहीं सुगम संगीत एवं लोक संगीत शिक्षण को भी अपने पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करना है। अभी तक अधिकांश संगीत संस्थाओं में शास्त्रीय संगीत शिक्षण संस्था व्यवस्था ही की जाती रही है। आज के विद्यार्थी वर्गों की रुचि सुगम एवं संगीत में होने के कारण शास्त्रीय शिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं पर इसका दुष्परिणाम पड़ रहा है। अतः आज के विद्यार्थी वर्ग में शास्त्रीय संगीत के प्रति रुचि निर्माण करने हेतु जिन विभिन्न उपायों का प्रयोग करना आवश्यक है, उनमें सुगम संगीत को अधिकाधिक शास्त्रीय रागों पर आधारित करना, समूह संगीत के पाठ्यक्रम प्रारंभ करना तथा उनमें भी शास्त्रीय राग एवं गीत प्रकारों एवं ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना का अधिकाधिक व्यवहार करना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। प्राचीन काल से आज तक, चाहे वह सामगान, गांधर्व अथवा जाति गायन रहा हो अथवा मार्गी, देशी या आधुनिक शास्त्रीय संगीत, सभी का मूल लोक संगीत में रहा है। लोकगीत ही परिष्कृत होकर अभिजात संगीत का स्वरूप धारण करता है। अतः संगीत संस्थाओं में लोक संगीत का भी गहन अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। लोक संगीत के गहन अध्ययन के अंतर्गत हमारा संपर्क सामान्य जनजीवन से होता है। संगीत संस्थाओं के कार्य क्षेत्र का प्रसार गांवों तक होता है। इसके पहले के औद्योगिकीकरण एवं शहर क्षेत्र जीवन के प्रभाव के गांवों की संस्कृति विकृत एवं विलुप्त हो, हमें उसकी सांस्कृतिक धरोहर सांगीतिक परंपराओं को सुरक्षित करने एवं उनका अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। उसके द्वारा हम न केवल भारतीय लोक संगीत का अध्ययन करेंगे, अपितु इस अध्याय तथा अध्ययन से भी अभिज्ञात संगीत को भी समृद्ध करेंगे। समाज में कलाओं का सच्चा महत्व क्या है, इसकी नीचे सुंदर व्याख्या की गई है। दर्शनीय कलाओं पर रॉकेफेलर पेन लकी सन 1964 की रिपोर्ट में इसमें कहा गया है, कलाओं के अभिवृद्धि संतुलित और सुरक्षित तथा समाज के लिए अति आवश्यक है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, यही कला का मुख्य उद्देश्य है। ये गिने चुने सौभाग्यशाली कलाकार व्यक्तियों की धाती नहीं है। इनका स्थान समाज की परिधि पर नहीं बल्कि उसके केंद्र में है। ये हमारे मनोरंजन के एकमात्र साधन है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे कल्याण के लिए, हमारे सुख के लिए इनका महत्व काफी अधिक है। संगीत संस्थाओं में लोक संगीत के विभाग खोले जाना तथा उनके अध्ययन की व्यवस्था करना कलाओं के लोकोपकारी महत्व को समाज एवं शासन को भी भले भांति समझना है। विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान के महत्व को हम कम करने की चेष्टा किए बिना लोकोचकारी संस्थाओं तथा सरकारी अधिकारियों के लिए यह जानना दिनों दिन आवश्यक होता जा रहा है कि कलाओं में सद्गुण संचारित करने की कितनी बड़ी शक्ति है तथा उन्हें उनका स्थान देना कितना आवश्यक है। यदि हमें जनता की शक्ति को शांतिपूर्ण, सृजनात्मक और रचनात्मक दिशाओं में ले जाना है तो हमें औद्योगिकीकरण की उन्नति और विज्ञान की प्रगति से अधिक कुछ और भी काम करने होंगे। हमें जनता की आत्मशक्ति और उसके चरित्र के विकास पर भी, जिसमें कलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, ध्यान देना होगा। संगीत कला इस हेतु एक सशक्त माध्यम के रूप में उपयोग में लाई जा सकती है। अतः समाज और राष्ट्र के हित में कलाओं में अन्य संगीत कला तथा उसकी शिक्षण संस्थाओं की उन्नति देश के उज्ज्वल सांस्कृतिक भविष्य हेतु नितांत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।